सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत सत्र के 13वें दिन। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए प्रारंभ कर देते हैं अपना प्रवास। मध्य लीला हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मध्य लीला के पहले दो अध्याय संपूर्ण शेष लीला का सारांश बताते हैं कविराज गोस्वामी। तीसरे अध्याय में महाप्रभु संन्यास के पश्चात वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के छल के द्वारा अद्वैताचार्य के घर पे जाते हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक था महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर। उसके पश्चात वहां पर महाप्रभु निश्चय करते हैं कि वो जगन्नाथपुरी जाएंगे माता शची इनकी आज्ञा के कारण, और उसके पश्चात वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। अध्याय चौथा जहाँ पर माधवेंद्रपुरी गोपाल इनकी स्थापना और खीरचर गोपीनाथ इनका पास टाइम हमने सुना। अध्याय पांचवा साक्षी गोपाल इनका वर्णन आता है। अध्याय छठे में महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार किस प्रकार से हुआ उसकी हमने चर्चा की। उसके पश्चात सातवें अध्याय में महाप्रभु का दक्षिण गमन वहां पर प्रारंभ होता है, और किस प्रकार से जब महाप्रभु दक्षिण जाना चाहते हैं, कई भक्त कहते हैं कि हमें भी साथ लेके जाइए, लेकिन महाप्रभु बहाना बताते हुए कि आप में ये सारे दुर्गुण हैं इसलिए महाप्रभु उनको नहीं लेके जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के विनती के ऊपर कृष्णदास करके एक ब्राह्मण था सरल, उनको महाप्रभु अपने साथ में लेके जाते हैं और दक्षिण देश में कीर्तन करते हुए लोगों को आलिंगन देते हैं। जैसे ही महाप्रभु किसी को आलिंगन देते हैं, वो व्यक्ति उसमें प्रेम संचारित हो जाता है, और वो दूसरे किसी व्यक्ति को यदि आलिंगन देता है तो वह व्यक्ति भी प्रेम से संचारित हो जाता है, और इस प्रकार से सारा गांव का गांव जो है वो वैष्णव बनाते हुए महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। करते करते वो बीच में हम लोग कल देखे कि किस प्रकार से कुर्म ब्राह्मण कुर्म क्षेत्र में वहां पर मिलते हैं, उनके घर पर रहते हैं, उनके परिवार वालों के ऊपर कृपा करते हैं, और उसके पश्चात महाप्रभु जो है वो वासुदेव विप्र उस पर कृपा करते हैं जिसे कुष्ठ रोग हुआ था, सारे शरीर में उसके कीड़े पड़े हुए थे। महाप्रभु ने जैसे ही उसे आलिंगन किया, उनका कुष्ठ दूर चला गया। नष्ट कुष्ठम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकार। इस प्रकार से हमने देखा था कि महाप्रभु ने उनका कुष्ठ रोग दूर कर दिया, उनका रूप सुंदर हो गया, और भगवान के महान भक्त भी वो वहीं पर बन जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है वो सातवां अध्याय था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को विनती किया था कि आप यदि विद्यानगर में जाएंगे तो आप रामानंद राय इनसे जरूर मिलिए। इस प्रकार से आठवां अध्याय का शीर्षक है रामानंद राय संवाद। उसकी भी हमने कल कुछ चर्चा की थी कि किस प्रकार से रामानंद राय और महाप्रभु एकत्रित आते हैं और रात्रि के समय उनके बीच में संवाद होता है। महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं पहला रामानंद राय जी से कि आप सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है उसकी चर्चा कीजिए, साध्य का वर्णन कीजिए। साध्य का अर्थ होता है कि मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, गोल विच वी वॉन्ट टू अचीव। ऐसा कौन सा गोल है, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो हर एक मनुष्य ने प्राप्त करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। और रामानंद राय फिर एक एक करके बताते हैं। सर्वप्रथम रामानंद राय कहते हैं कि स्वधर्म आचरण। महाप्रभु कहते हैं तो बाह्य है, आगे कहो। उसके पश्चात रामानंद राय बताते हैं कि कृष्ण कर्म अर्पण। महाप्रभु कहते हैं यह भी बाह्य है। उसके पश्चात रामानंद राय बताते हैं कि स्वधर्म त्याग। महाप्रभु कहते हैं यह भी बाह्य है। उसके पश्चात रामानंद राय बताते हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति। महाप्रभु कहते हैं यह भी बाह्य है। उसके पश्चात रामानंद राय बताते हैं ज्ञान शून्य भक्ति। महाप्रभु यहाँ पर स्वीकृति देते हैं कि ठीक है, यहो है, आगे कहो। उसके पश्चात महाप्रभु प्रेम भक्ति के बारे में, रामानंद राय प्रेम भक्ति के बारे में बताते हैं। महाप्रभु कहते हैं यहो है। उसके पश्चात दास्य भाव। महाप्रभु कहते हैं यहो है, आगे कहो। फिर सख्य भाव बताने के बाद महाप्रभु कहते हैं कि यहो उत्तम, यहो उत्तम। उसके पश्चात वात्सल्य, यहो उत्तम। और फिर जब कांता प्रेम माधुर्य रस के बारे में बताते हैं, महाप्रभु कहते हैं यही साध्य अवधि, ये सर्वश्रेष्ठ जो है वो साध्य है, सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। और उसके पश्चात रामानंद राय और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो श्रीमती राधारानी, इनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं। और फिर महाप्रभु कहते हैं कि ये साध्य शिरोमणि है, ये सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची वस्तु है। इसलिए जब हम कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत यह ग्रंथ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, भगवद गीता अंडर ग्रेजुएट है, श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएट है और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट क्यों है? क्योंकि हम लोग यदि इन तीनों ग्रंथों को देखेंगे, भगवद गीता की शुरुआत होती है हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसको चलते शुरुआत होती है। देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र नमुह्यति। और भगवद गीता का अंत होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरे अकेले की शरण कर ग्रहण करो, ऐसा भगवान कृष्ण बताते हैं। और भगवद गीता का जहां पे अंत होता है वहां पे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। जन्मादस्य यत अन्वयात इतरतः चार्थेश्व भिन्न स्वराट, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्याख्या बताई जाती है और सारे धर्मों का त्याग दूसरे श्लोक में बताया गया है। धर्मः प्रोज्जित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तो इस प्रकार से जो है वो सारे कैटव धर्मों को भागवतम त्याग कर देता है और भागवतम का अंत होता है 12वें स्कंद का सबसे आखिरी श्लोक है भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन जो है वो सारे वस्तुओं का सार है, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप हमारे शमन हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति नाम कीर्तन करता है। तो हम लोग देखते हैं भगवद गीता की शुरुआत होती है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और अंत होता है शरणागति से भगवान को। श्रीमद् भागवत की शुरुआत वहीं पर होती है जहां से भगवद गीता अंत होती है, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और सारे कैटव धर्मों का त्याग। भागवतम का अंत होता है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन में, और जहां पे श्रीमद् भागवतम का अंत होता है वहां पर चैतन्य चरितामृत शुरू होता है, कि किस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और कृष्ण नाम का गान किया करते थे। केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल प्रेमिते भसिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। इस प्रकार से दक्षिण भारत की यात्रा में जब महाप्रभु गए थे, स्त्री वृद्ध अबाल इन सबको महाप्रभु कीर्तन में जो है वो नचा रहे थे। तो इसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इसलिए नहीं कहा जाता कि ये समझने के लिए मुश्किल है। बहुत बार हमें जब पोस्ट ग्रेजुएट जब हम सुनते हैं तो कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट ये इसके लिए नहीं है कि समझने के लिए मुश्किल है, ये केवल एक अगला स्तर है और रस के दृष्टिकोण से इसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहा गया है। क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का तो सार है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, सारे वेदों का सार कहा गया है श्रीमद् भागवत को, लेकिन उसी श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम भी नहीं आता है। और यहां पर हम लोग देखते चैतन्य चरितामृत में जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु इनके बीच में जब संवाद होता है तो वहां पर सर्वश्रेष्ठ साध्य बताया गया है श्रीमती राधा रानी, इनका प्रेम। तो अभी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से अगला प्रश्न पूछते हैं उसी दिन। तो अभी हम लोग अगला चर्चा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अभी साध्य तो महाप्रभु ने समझ लिया, साध्य का अर्थ है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। उसके पश्चात महाप्रभु पूछते हैं कि मुझे कृष्ण का स्वरूप और श्रीमती राधा रानी इनका स्वरूप का विवरण मुझे चाहिए। कृष्णेर स्वरूप कह राधार स्वरूप रस कोन तत्व प्रेम कोन तत्व रूप। कृष्ण का स्वरूप क्या है, श्रीमती राधारानी का स्वरूप क्या है, रस ये क्या तत्व है और प्रेम ये क्या तत्व है, ऐसे चार चीजें एकत्रित रूप में महाप्रभु रामानंद राय से पूछ लेते हैं। तो ये तत्व को जानना बहुत एक आवश्यक होता है एक साधक को, क्योंकि जब हम तत्व को समझ लेते हैं तब हमारी शरणागति भगवान के प्रति और अधिक बढ़ सकती है। तो जैसे वैसे देखा जाए तो ये कृष्ण तत्व और राधा तत्व हम लोग आदि लीला के तीसरे और चौथे अध्याय में देख चुके हैं और दूसरे अध्याय में भी, दूसरे अध्याय आदि लीला का जिसका शीर्षक है चैतन्य तत्व निरूपण। तो चैतन्य तत्व बताने से पहले कविराज गोस्वामी कृष्ण तत्व को स्थापित करते हैं। और महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण और बाह्य कारण, इनको चर्चा करने से पहले श्रीमती राधारणी का तत्व स्थापित करते हैं। तो इसलिए राधा और कृष्ण इन तत्वों को हमने जो सुना है उसी को यहाँ पर कवि रामानंद राय अभी दोहराते हैं और इस प्रश्न को महाप्रभु के जवाब देते हुए कहते हैं। ये मध्यलीला का 8वां अध्याय श्लोक संख्या 120 के आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राय कहे इहा आमी किचुई ना जानी, तुम्ही यही कहा वो से कही आमी वाणी। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, रामानंद राय कहते हैं, लेकिन जो आप मेरे मुख से जो बुलवा रहे हैं वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी भक्ति तत्व ना ही जानी मायावादे भासी। महाप्रभु कहते हैं अरे मैं तो केवल एक सन्यासी मात्र हूँ, मैं भक्ति तत्व के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे सुन रहा हूँ। तुम्हार ठाई आई लाई तुम्हार महिमा सुनिया, तुम्हें मोरे स्तुति कर सन्यासी जानिया। तुम्हारी महिमा सुन के तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ सुनने के लिए, और आप मुझे सन्यासी बोल के जो है वो दूर ठकरा रहे, ऐसा मत करो। क्योंकि कृष्ण तत्व का ज्ञान सन्यास और कौन से आश्रम के ऊपर निर्धारित नहीं है। जो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। जो भगवान कृष्ण के बारे में अच्छे से ज्ञान रखता है वह गुरु हो सकता है। किबा विप्र कोई ब्राह्मण है या कोई सन्यासी है या कोई शूद्र है, ये कोई मायना नहीं रखता है। सन्यासी बोलिया मोरे ना करी है वंचन, राधा कृष्ण तत्व कही पूर्ण कर मन। सन्यासी है आप और आप अधिक जानते हैं, इसलिए मुझे दूर मत ठकराओ और मुझे राधा कृष्ण इस तत्व का ज्ञान देके मेरे मन को तृप्ति और संतुष्टि दिलाओ। राय कहे अमी नट तुम्ही सूत्रधार, यही मत नाचा होते छे चाही नाची बार। राय कहते हैं कि मैं तो केवल एक नट हूँ, सूत्रधार, कठपुतली जैसा, आप जैसे नचाएंगे वैसे मैं नाच रहा हूँ और आप मुझे बुलवा रहे हैं। और बहुत सुंदर रामानंद राय की नम्रता यहाँ पे प्रकट होती है। मोर जिह्वा वीणा यंत्र तुम्ही वीणा धारी, तुमर मने यही उठे तहाई उच्चारी। मेरी जिह्वा जो है वो एक वीणा के समान है और आप जो है वो इस प्रकार से वीणाधारी है। जो वीणा जिस प्रकार से वीणाधारी व्यक्ति बजाता है उसी प्रकार से वीणा बजती है, उसी प्रकार से मेरी जिह्वा जो है एक वीणा के समान है और आप वीणाधारी है, आपकी शक्ति से ही मैं इन सारे तत्वों को कह पा रहा हूं। अभी रामानंद राय सर्वप्रथम कृष्ण तत्व इसका वर्णन करते हैं कि कौन है कृष्ण तत्व। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। यह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान और सर्व अवतारी, सारे अवतारों के वो स्रोत है और सारे कारणों के वो कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड इहा सबार आधार। कितने सारे वैकुंठ गण है, कितने सारे अवतार है और कितने सारे ब्रह्मांड है, इन सब के आधार कोई है तो वो है भगवान कृष्ण सच्चिदानंद तनु व्रजेंद्र नंदन सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। जो श्री कृष्ण है उनका दिव्य देह है, सच्चिदानंद स्वरूप है, व्रज के वो नंदन है, नंद महाराज के पुत्र है, समस्त ऐश्वर्य शक्ति और दिव्य रसों की वो जो है वो खान है, उन सब से परिपूर्ण है। पुरुष योषित किबा स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मंथन मदन। कृष्ण का अर्थ ही होता है कि आकर्षक, सबको आकर्षित कर लेते हैं वो। कोई पुरुष है, नारी है, स्थावर है, जंगम है, सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वो साक्षात मदन मोहन के ही जो है वो रूप है, साक्षात मदन ही है, ऐसे है भगवान कृष्ण। आपना माधुर्य हरे आपना रमन, आपना आपनी चाहे कर रीते आलिंगन। वो इतने आकर्षित है कि अपने स्वयं के प्रति भी वो आकर्षित हो जाते हैं और स्वयं का आलिंगन करना चाहते हैं, ऐसे उनकी दिव्य माधुरी है। तो इस प्रकार से कृष्ण तत्व इसका निरूपण करने के पश्चात अभी वो राधा तत्व इसका विवरण श्लोक संख्या 151 से लेके प्रारंभ करते हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों में तीन शक्तियां प्रधान है, चित शक्ति माया शक्ति और जीव शक्ति। चित शक्ति का अर्थ होता है अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति का अर्थ होता है बहिरंगा शक्ति, और एक है जीव शक्ति जिसे हम लोग तटस्थ भी कहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, भगवान की एक है बहिरंगा शक्ति जो जीव को नियंत्रण में रखती है, और एक है जीव शक्ति जो तटस्थ है, जो कभी माया से भी प्रभावित हो सकती है और कभी कृष्ण के भी शरण में आ सकती है। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था को ही यारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार ऊपर है। तो ये तीन शक्तियां हैं अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ, इसमें इन तीनों में जो अंतरंगा शक्ति है वो सबार ऊपर है, वो सबसे जो है वो ऊपर है। तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, शाश्वत है, ज्ञान और आनंद के दिव्य स्वरूप है, और अंतरंगा शक्ति ये भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को भी जो है वो निर्धारित करती है। आनंद अंश लादिनी सद अंश संधिनी चिद अंश संवित यारे ज्ञान करी मानी। तो जो भगवान का आनंद अंश है वो लादिनी शक्ति है, जो भगवान का सत अंश है मतलब शाश्वत वाला वो संधिनी शक्ति है, और जो चित अंश है जो ज्ञान अंश है वो संवित शक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपने। जो भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं इसलिए उनका नाम है लादिनी, और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण रसों का आस्वादन करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त गणे सुख दीते लादिनी कारण। कृष्ण मूर्तिमान सुख होते हुए भी सभी प्रकार के सुखों का वो आस्वादन करते हैं, और भक्तों को भी आनंद प्रदान करने का उनको पोषण देने का काम ये लादिनी शक्ति करते हैं। लादिनी रस सार अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। ये जो लादिनी शक्ति है उसका यदि पूर्ण सार निकल जाए तो उसका नाम होता है प्रेम, और यह प्रेम आनंद रस से जो है वो परिपूर्ण है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सी महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। तो तीन शक्तियां हैं प्रदान, संधिनी संवित लादिनी। लादिनी सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान को आनंद प्रदान करती है और भक्तों का पोषण करती है। इस लादिनी का यदि सार निकला जाए तो वो आएगा प्रेम, और प्रेम का भी निचोड़ के सार निकाल के उसमें से कुछ निकाला जाएगा तो वो बनेगा महाभाव, और ऐसे महाभाव से बनी हुई है राधा ठकुरानी। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। श्रीमती राधारानी का शरीर भगवत प्रेम का जो है वह वास्तव में एक रूपांतर है, और कृष्ण की वह सर्वाधिक प्रिय संगनी है, और ये सर्व जगत में प्रसिद्ध है। सी महाभाव है चिंतामणि सार कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। वो श्रीमती राधारानी वो महाभाव ही आध्यात्मिक जीवन का सार है, और उनका एकमात्र कार्य क्या है, उनका एकमात्र कार्य भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना, यही उनका एकमात्र कार्य है। जैसा हमने आदि लीला में देखा था कि उनका नाम राधा क्यों है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वा खाने। कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ति करती है, केवल एकमात्र उनका वही कार्य है, इसलिए उनका नाम भी जो है वो इसी प्रकार से जो है वो दिया गया है। इस प्रकार से श्रीमती राधारानी इस तत्व का रामानंद राय विस्तार से वर्णन करते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु अगला प्रश्न, पहला प्रश्न था साध्य बताइए, गोल उद्देश्य क्या है। दूसरा प्रश्न था महाप्रभु का कि राधा और कृष्ण इस तत्व को बताइए, प्रेम क्या तत्व है, रस क्या तत्व है उसे बताइए। वो बताने के पश्चात अभी महाप्रभु पूछते हैं कि साध्य तो आपने बता दिया लेकिन उसे प्राप्त करने का साधन क्या है। तो ये तीसरा प्रश्न महाप्रभु पूछते हैं कि अभी मुझे आप साधन के बारे में बताएं। तो एक होता है साधन, दूसरा होता है साध्य। साध्य मतलब उस वस्तु को हमें प्राप्त करना है, साधन वो है जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि एई होए तुम्हारा प्रसादे इहां जानी लू निश्चय। श्लोक संख्या 196 से ये अगला संवाद शुरू होता है। प्रभु कहते हैं, महाप्रभु अभी पूछते हैं कि मानव जीवन के लक्ष्य की सीमा तो अभी मुझे पता चल गई कि जिस प्रकार से राधा रानी भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, न्योछावर कर देती है, हमें भी उस प्रकार से उस प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वो तो सारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका साधन के बारे में हमें बतलाइए। साध्य वस्तु साधन विनु केहना ही पाए, कृपा करी कह राय पाबर उपाय। साधन के बिना जो है वो साध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिस प्रकार से पात्र नहीं है तो उस पात्र के बिना दूध कैसे रखा जाएगा। दूध तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन उसे पाने के लिए मुझे पात्र चाहिए। ऊपर जाना है मुझे समझ में आ गया, लेकिन यदि सीढ़ी नहीं है तो ऊपर कैसे जाया जाएगा। तो आप इस साधन का जो है वो अच्छे से निरूपण कीजिए। रामानंद राय नम्रता से महाप्रभु से कहते हैं, मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अनंत रहस्य शून साधनेर कथा। आपने मुझे वक्ता बना दिया है, आप श्रोता बन गए हैं, लेकिन ये केवल आपकी कृपा और शक्ति से ही संभव है। इसलिए मैं अभी साधन के बारे में कुछ कहता हूँ, सुनिए। तो ये जो साधन है ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बहुत बार हमारा साध्य हम लोग निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन साधन में यदि हम लोग कमजोर हो जाए तो उस साध्य को हम लोग कभी नहीं हासिल कर सकते। तो साधन के बारे में अभी रामानंद राय बता रहे हैं। राधा कृष्णेर लीला ए अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे नाह गोचर। ये राधा और कृष्ण लीला जो है वो ये जो है वो दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस इनसे परे है। इन रसों में भी कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो भी उस ऊंचे तत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कौन समझ सकता है फिर? सबे एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी है ते होय ए लीला रविस्तार। यदि कोई व्यक्ति जो भगवान की सखियां है उनका अनुगत्य करे तो ही वह व्यक्ति इन लीलाओं को, इस तत्व को ठीक से समझ सकता है। और इसलिए महाप्रभु वास्तव में देखा जाए तो वही हमें प्रदान करने के लिए आए हैं। आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। महाप्रभु हमें वही प्रदान करने के लिए आए हैं कि आराध्य भगवान व्रजेश तनया। आराध्य कौन है सबसे? वृंदावन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण। आराध्य भगवान व्रजेश तनया, और सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है? तद्धाम वृंदावनम। और उनकी उपासना कैसे की जाती है, और कौन सी उपासना सर्वश्रेष्ठ है? आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। जो व्रजवधुओं के द्वारा जो उपासना की जाती है वह सर्वश्रेष्ठ जो है वह उपासना या आराधना या साधन माननी चाहिए। वही यहाँ पर रामानंद राय कहते हैं कि जब तक इन सखियों का अनुगत्य, दास दासानुभाव जब तक इनके प्रति नहीं आएगा, तब तक हम भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकेंगे। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तर या सखी आस्वाद है। इन सखियों के अनुगत्य, इनके कृपा के बिना जो है वो ये लीला भी जो है वो पुष्ट नहीं होती, और यही सखियां इन लीलाओं को विस्तारित करती है और आस्वादन भी करती है। सखी बिना ए लीलाए अन्यर नहीं गति, सखी भावे ये तारे करे अनुगति। सखियों की जो है वो इन गोपियों के सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों के पद चिन्हों पर चलता है, वही राधा कृष्ण की वृंदावन में दिव्य सेवा प्राप्त कर सकता है। और ये जो सखियों का भाव है, उस भाव की विशेषता रामानंद राय बताते हैं। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन। ये इनका प्राकृतिक स्वभाव, एक इनका नैसर्गिक स्वभाव है कि ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वयं अपना भोग नहीं करना चाहती। कृष्ण सह राधिकार लीला ये कराए, निज सुख है ते ताते कोटि सुख पाए। ये श्रीमती राधा रानी को भगवान के साथ एकत्रित करना चाहती है, और जब राधा और कृष्ण इस प्रकार से लीला करते हैं तो उनका सुख कोटि गुणा जो है वो बढ़ जाता है। वो स्वयं को भगवान के साथ नहीं मिलाना चाहती है। तो ये तो हो गया सखियों का स्वभाव। श्रीमती राधा रानी का क्या स्वभाव है? यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नाही मन तथापि राधिका यत्ने करान संगम। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है वो क्या करती है कि इन गोपियों को, इन सखियों को भगवान कृष्ण के साथ ये न के न प्रकारे न संगम करा के उनका आनंद बढ़ाना चाहती है। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार नहीं काम नाम। कविराज गोस्वामी पुनः हमें इंगित कराते हैं कि ये प्रेम और काम के बीच में आप भ्रमित बिल्कुल मत होइए। ध्यान दीजिए, सहज गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, ये जो स्वाभाविक प्रेम है गोपियों का, इसे आप बिल्कुल काम वासना के रूप में मत देखिए। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्य। स्वयं का सुख यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो उसे काम कहते हैं, लेकिन भगवान का संतोष यहाँ पर गोपियां चाहती है इसलिए उसे प्रेम कहते हैं, जो हमने आदि लीला में भी चर्चा किया था। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आदि लीला में आया था वो यहाँ पर मध्य लीला में भी आ रहा है और वही बाद में अंत लीला में भी आता है। तो ये इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, शब्द बल अलग अलग हो रहे हैं लेकिन उनका भाव एक ही जो है वो दोहरा रहे है कविराज गोस्वामी। रागानुग मार्गे तार भजे ये जन से जन पाय व्रजे व्रजेंद्र नंदन। रागानुग मार्ग का यदि कोई व्यक्ति अवलंबन करता है तो वही व्यक्ति जो है वो व्रज की भक्ति और व्रजेंद्र नंदन इनको पा सकता है, अन्य कोई उपाय जो है वो नहीं है। इस प्रकार से रामानंद राय बता रहे हैं। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजलेह नहीं पाए व्रजेंद्र नंदने। गोपियों की कृपा नहीं प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, उनके पद कमलों या उनके पद चिन्हों पर नहीं चलता है, वह व्यक्ति व्रज भक्ति को कभी नहीं प्राप्त करेगा। ऐश्वर्य भाव से कोई व्यक्ति भगवान का कितना भी भजन कर ले, लेकिन उसे व्रज भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और उसका दृष्टांत देते हैं कविराज गोस्वामी। तहाते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन तथापि न पाइल व्रजे व्रजेंद्र नंदन। लक्ष्मी जी ने भी जो है वो भजन किया था, साधना की थी, लेकिन गोपियों का अनुगत्य उन पर जब तक नहीं हुआ तब तक उन्हें भी जो भगवान कृष्ण की व्रज भक्ति नहीं मिलती है। जब महाप्रभु इस प्रकार से सारे श्रेष्ठ साधन के बारे में, रागानुग भक्ति इसके बारे में सुन लेते हैं, महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एतशुनि प्रभु तारे कैल आलिंगन एई दुनी गला गली करे न क्रंदन। इस प्रकार से जब महाप्रभु सुन लेते हैं तो आलिंगन देते हैं और गला गली दोनों एक दूसरे के गले में लग जाते हैं और करे न क्रंदन दोनों जो है वो रोना प्रारंभ कर देते हैं भगवत प्रेम के वश में आकर। तो इस प्रकार से महाप्रभु रामानंद राय के संग में दक्षिण भारत में जब गए थे तो विद्यानगर क्षेत्र में 10 दिन तक महाप्रभु वहां पर रहते हैं और हर दिन शाम को वो दोनों एकांत स्थान में एकत्रित आते हैं और उसी प्रकार से जो है वो इनकी कृष्ण कथा और उसकी चर्चा जो है वो चलती रहती है। और अभी उसमें से ही एक दिन उनकी चर्चा के विषय के बारे में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे कई सारे प्रश्न महाप्रभु ने रामानंद राय के सामने उपस्थित किए और रामानंद राय उनके क्या जवाब दिए, ये भी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास करके मेरे ये फेवरेट श्लोक और इनके भाषांतर है। श्लोक संख्या 244 से लेके ये प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हो जाती है, तो इसे एक साधक का भाव क्या होना चाहिए वो भी हमें समझता है। महाप्रभु अलग अलग प्रश्न पूछते हैं रामानंद राय इनसे और रामानंद राय इनका कितना सही, जैसे हिटिंग द नेल ऐसे करके इन जवाब को लाजवाब प्रकार से जो है वो उत्तर देते हैं। प्रभु पूछे रामानंद करे ना उत्तर यही मते सही रात्रे कथा परस्पर। महाप्रभु प्रश्न पूछते जा रहे, रामानंद राय जवाब देते हैं और इस प्रकार से उनका संवाद चलता है। मैं केवल श्लोक बताता हूं और लगा तो भाषांतर हम लोग देखेंगे। प्रभु कहे कोन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। सारे विद्याओं की सार कौन सी विद्या है, रामानंद राय कहते हैं कि कृष्ण भक्ति एकमात्र विद्या है, बाकी विद्या कुछ नहीं है। कीर्तिगण मध्य जीवेर कोन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया यहाँ हो ये ख्याति, कि सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है। रामानंद राय कहते हैं कि भगवान कृष्ण का भक्त बुला जाना ये सबसे बड़ी जो है वो कीर्ति है। महाप्रभु अगला प्रश्न पूछते हैं, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, हमें भी प्रश्न होता है कि सबसे बड़ी संपत्ति एक व्यक्ति की कौन सी है, स्विस बैंक में अकाउंट होना या कितना बैंक बैलेंस होना, इतनी दंपत्ति होता है, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है व्यक्ति की। संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम या रसे बड़ा धनी, कि राधा और कृष्ण के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्राप्त हो गया है वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मानना चाहिए। दुख मदे कोन दुख होयो गुरुतर, कृष्ण भक्ति विरह विना दुख नाही देखी पर, सबसे बड़ा दुख कौन सा है ये महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं। रामानंद राय कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्तों से विरह हो जाना यह सबसे बड़ा जो है वो दुख है, इसलिए भगवान के भक्तों की संगति ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ा दुख यदि कौन सा है तो भगवान के भक्तों से विरह प्राप्त करना है सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान के कई बड़े बड़े भक्त, आप देख लीजिए श्रीमद् भागवत में वो जब प्रार्थना अर्पण करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आपके भक्तों का संग हमें प्रदान कीजिए। ध्रुव महाराज की प्रार्थना आप देख लीजिए, भक्ति मोह प्रवाह ताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोलबणम उरुव्यसनम भवाब्दिम नेश्य भवद गुण कथा अमृत पान मत्तः, मुझे आपके भक्तों का संग दे दीजिए और उन भक्तों के संग में मैं रहूंगा और उससे जो है वो कथा कीर्तन में लगा रहूंगा और इस भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा, बाकी कुछ मुझे अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार से आप पृथु महाराज की प्रार्थना पढ़ लीजिए, प्रहलाद की प्रार्थना पढ़ लीजिए, सारे प्रार्थना प्रचेताओं की प्रार्थना पढ़ लीजिए, सब में वो लोग एक ही चीज मांगते हैं वो है भगवान के भक्तों का संग। यहाँ पर महाप्रभु वही प्रश्न पूछे थे रामानंद राय से कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो हमें भी यही समझना चाहिए कि भक्तों से विरह ये सबसे बड़ा दुख है। मुक्त मदे कोन जीव मुक्त करिमानी, कृष्ण प्रेम यार से मुक्त शिरोमणि, सारे मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति कौन सी है, ये जब प्रश्न पूछा गया रामानंद राय कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त है और कृष्ण प्रेम जिस व्यक्ति को प्राप्त कर लिया है उसे मुक्त शिरोमणि, सारे मुक्त आत्माओं में वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो मुक्त व्यक्ति मानना चाहिए। जो गीत हम लोग गाते हैं, कौन सा गीत आपको प्रसिद्ध है, कौन सा गीत, कौन से फिल्म का गाना हमें अच्छा लगता है, तो गीतों में से श्रेष्ठ गीत कौन सा है, गीत मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म राधा कृष्ण प्रेम के लिए गीतेर मर्म, कि सारे गीतों अनेक गीतों में जो है किस गीत को जीवन का वास्तविक धर्म मानना चाहिए। रामानंद राय बताते हैं कि कृष्ण प्रेम का वर्णन करने वाला जो गीत है वो गीत जो है वो सारे गीतों में श्रेष्ठ है। हम कई सारे शुभ कर्मों में लगते हैं, ये शुभ कर्म है, ये लाभप्रद है, शुभ लाभ जिस प्रकार से घरों के बाहर लिखा जाता है। महाप्रभु पूछते हैं, श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवेर हो सार, कृष्ण भक्त संग विना श्रेय नहीं आर, सबसे बड़ा शुभ वस्तु क्या है, सबसे लाभप्रद चीज क्या है, ये जब पूछा गया तब रामानंद राय कहते हैं कि कृष्ण भक्त संग विना श्रेय नहीं आर, कि भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति के बिना दूसरा कोई श्रेय हमारे जीवन में जो है वो नहीं है। स्मरण क्या चीज का हमें करना चाहिए, कहार स्मरण जीव करीबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान श्रवण प्रधान स्मरण, कि हर क्षण व्यक्ति ने किस चीज का स्मरण करना चाहिए, ये यहां पर महाप्रभु पूछते हैं। रामानंद राय कहते हैं कि कृष्ण नाम लीला गुण रूप इन वस्तुओं का जो है हमने स्मरण सदैव करना चाहिए। ध्येय क्या होना चाहिए हमारा, ध्येय मतलब सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य, जीवन का गोल। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कोन ध्यान, राधा कृष्ण पदम्बुज ध्यान प्रधान, सर्वश्रेष्ठ ध्येय हमारा क्या होना चाहिए जीवन का, राधा और कृष्ण इन युगल के चरणों का ध्यान जो है वो सारे ध्यानों में प्रधान ध्यान जो है वो हमारा होना चाहिए। हमने सब कुछ चीजों को त्याग करके कहाँ पे रहना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा जगह है जहां पर हम लोगों ने ध्यान जाने के लिए, सेटल होने के लिए सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका चले जाओ, हवाई चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वो सब रहने के लिए जो है वो उत्तम स्थान है। महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, सर्व तेजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, व्रज भूमि वृंदावन यहाँ लीला रास। सब छोड़कर व्यक्तियों ने कहाँ जाके जो है वो रहना चाहिए। कवि रामानंद राय कहते हैं कि व्रज भूमि वृंदावन, जहां पे भगवान कृष्ण की अनंत लीलाएं हुई थी, वहां पर जो है सर्वश्रेष्ठ निवास उसे मानना चाहिए। हम कई सारे चीजों को सुनते हैं, ये सुन लिया, वो सुन लिया, न्यूज सुन लिया, ये सब सुनने में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। श्रवण मध्य जीवेर को न श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन। श्रवण मध्य सारे वस्तुओं के लिए, सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है। यहां पर रामानंद राय कहते कि राधा और कृष्ण इनके प्रेम का जो वर्णन है वो हमारे लिए कर्णों के लिए जो है वो रसायन है। कर्ण रसायन वो हमारे कर्णों के लिए औषधि है। और उपास्य मतलब पूजा के विषय में कहा गया है कि क्या पूजा और किसकी पूजा और कैसी पूजा होनी चाहिए। उपास्यर मध्ये कोन उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। महाप्रभु पूछते हैं कि समस्त पूजा योग्य उपास्य वस्तुओं में श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है। रामानंद राय उत्तर देते हैं कि प्रधान पूजा योग्य वस्तु जो है वो केवल राधा और कृष्ण इनका नाम है। तो इसलिए हमें जो महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ उपास्य वस्तु जो दी है वो इस महामंत्र के द्वारा, जिसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों उपस्थित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है ये उपास्य में जो प्रधान वो शिरोमणि वो हमें यहाँ पर प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से इन दोनों का संवाद जो है वो चलता रहता है। एई मत दुई जन कृष्ण कथा रसे, नृत्य गीत रोदने हैल रात्रि शेषे। इस प्रकार से दोनों कथा कीर्तन गान नृत्य में पूरी रात बिता देते हैं, और इस प्रकार से जब सुबह हो जाती है तब महाप्रभु पुनः अपने दूसरे घर चले जाते हैं, और उनका संवाद जो है वह हम लोग देख सकते हैं क्या क्या हमें इसमें मिलता है। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व विविध प्रकार, ये सारे तत्व हमें यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से उनकी चर्चा जो है वो होती रहती है। तब फिर जो है अभी राधा चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के ऊपर एक और विशेष कृपा करते हैं और अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। रामानंद राय जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित होके महाप्रभु के सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं कि महाप्रभु अभी तो मैं आपको सन्यासी के रूप में देख रहा था, अभी अचानक आप एक नंद कुमार श्याम सुंदर कैसे बन गए, ये क्या हो गया, और अचानक ये आपकी कांति इस प्रकार से जैसे पिघला हुआ सोना है उसके जैसे कैसे प्रतीत हो रही है, तो आप मेरा संशय दूर करें, आप है कौन। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं कि मैं वही हूं सन्यासी जो तुम देख रहा है, तू थोड़ा बड़ा भक्त है और बड़े भक्त का लक्षण यही होता है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम तहां तहां होय तार श्री कृष्ण स्मरण। महाभक्त का एक लक्षण होता है कि जहां जहां देखता है वो कृष्ण का ही जो है वो स्मरण करता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। जहां पर भी वो कहीं देखता है, स्थावर जंगम चल वस्तु अचल वस्तु, जहां जहां कुछ देखता है स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, उस 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 बाह्य वस्तु को नहीं देखता, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति, वो यही देखता है कि मेरे 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 जो इष्ट देव है भगवान श्री कृष्ण, उनका ही यह प्रतीकात्मक रूप है, जहां पर वो देखता है वहीं पर वही देखता है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, ऐसे श्रीमती राधा रानी। तो जहां जहां नेत्र पड़ता है महान भागवत का, वहां पर उसे उनके इष्ट देव का ही स्मरण होता है, ऐसा जो है महाप्रभु उनको बताते हैं। और फिर रामानंद राय कहते हैं कि कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और आपका असली रूप कुछ अलग है, उसे मत छिपाइए, उसे आप मेरे से जो है वो छिपा रहे हैं। मैं समझ गया हूं आप वही कृष्ण हैं, और शायद आप राधा रानी का भाव लेके आए हैं। मैं समझ रहा हूं। राधिकार भाव कांति करिया अंगीकार, निज रस आस्वादिते करियाचेन अवतार, आपने अवतार लिया है, राधा रानी का भाव और कांति लेके कृष्ण स्वयं आए हुए हैं ऐसा लग रहा है, और उस रस का आस्वादन करने के लिए जो अंतरंग कारण हमने जो चौथे अध्याय में आदि लीला के वर्णन किया था, वो अंतरंग कारण को रामानंद राय महाप्रभु के कृपा से समझ गए, और कहे कि उसी के कारण जो आप है वो यहाँ पर जो है वो अवतरित हुए हैं। तबे हासी तारे प्रभु देखाइला स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। इस प्रकार से महाप्रभु वहां पर हंसते हैं, स्मित हास्य करते हैं, और वो रसराज श्री कृष्ण और महाभाव रूपी राधा रानी, ये प्रसिद्ध पेंटिंग भी इस किताब के अंदर है कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते करते अचानक से वहां पर राधा और कृष्ण प्रकट हो जाते हैं दोनों, और इस दिव्य दर्शन को रामानंद राय अपने आंखों से देखते हैं, और क्या परिणाम होता है, देखी रामानंद हैला आनंदे मूर्छिते, धरिते ना पारे देह पड़िला भूमिते। इस प्रकार से जब रामानंद राय देखते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, अपने शरीर को संभाल नहीं पाते, और वो भूमि पर जो है वो गिर जाते हैं। फिर उसके पश्चात, ऐसा दर्शन करने के पश्चात, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण दोनों उनके हस्त उनके शरीर को स्पर्श करते हैं, और उन वो सचेतन हो जाते हैं, और जब देखते हैं तो अभी राधा और कृष्ण नहीं है वहां पे, केवल एक सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु वहां पर खड़े रहते हैं। महाप्रभु बताते हैं रामानंद राय से कि मैंने जो तुम्हें दर्शन दिया वो मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया है, और इसके बारे में चर्चा किसी के साथ नहीं करना, किसी को मत बताओ, ये रूप का दर्शन मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया है। और ऐसा कह के महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करते हैं, और दोनों इस प्रकार से प्रेम का जो है वो आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से 10 दिन तक महाप्रभु विद्यानगर में रामानंद राय इनके साथ रहे। महाप्रभु ने रामानंद राय को आज्ञा दी कि आप यहाँ का सब कारोबार जो है वो छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत यात्रा समाप्त होने के पश्चात मैं पुनः जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, आप भी जो है वो यहाँ का सब कारोबार छोड़ के जगन्नाथपुरी आ जाइए, और वहाँ पे हम लोग कृष्ण कथा का इस प्रकार से निरंतर आस्वादन करते रहेंगे, तो आप भी वहाँ पर जो है वो चले आइए। इस प्रकार से जो है वो ये अध्याय समाप्त होता है। सहजे चैतन्य चरित्र घन दुग्धपुर रामानंद चरित्रता है खंड प्रचुर। बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं कविराज गोस्वामी कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जो है वो कैसा है, एक गाढ़े दूध के समान है, और रामानंद चरित्रता है खंड प्रचुर। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र दूध के समान है, रामानंद राय इनका चरित्र एक मिश्री के समान है। तो दूध और मिश्री एकत्रित आती है, दोनों एकत्रित तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो चर्चा कर रहे हैं राधा कृष्ण लीला ताते कर्पूर मिलन भाग्यवान यही से ही करे आस्वादन। तो चैतन्य महाप्रभु दूध के समान है, रामानंद राय मिश्री के समान है, दोनों मिलके मीठा दूध बन जाते हैं, लेकिन जब वो राधा कृष्ण इनके पास टाइम्स की चर्चा करते हैं तब उसमें कर्पूर मिलाने के समान है, और आप और हम जब इसका आस्वादन करते हैं इनसे बड़ा धन्य और इनसे बड़ा जो भाग्यवान है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इनसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है, और जो जो इसे सुन लिया वो तो उसके भाग्य उदित हो गए। रस तत्व ज्ञान होय इहर श्रवणे प्रेम भक्ति होय राधा कृष्णेर चरणे। जो भी व्यक्ति इस तत्व को रस तत्व ज्ञान होय, जो भी इस तत्व इन 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 लीला को सुन लेता है रस और तत्व, उस व्यक्ति को जो है उसका ज्ञान हो जाता है और प्रेम भक्ति होय राधा कृष्णेर चरणे, राधा कृष्ण के प्रति उनके चरणों के प्रति प्रेम भक्ति उस व्यक्ति के हृदय में स्फुरित हो जाती है जो इसे सुन लिया है। तो आप सब लोग सुन लिया है तब हम सभी को कविराज गोस्वामी इनका आशीर्वाद जो है वो बहुत जल्दी फलित हो जाएगा। अभी हम आते हैं अध्याय 8 का पहला श्लोक, जो हमने कहा कि पहला श्लोक हम सबसे आखिर में चर्चा करते हैं, संपूर्ण लीला होने के पश्चात उसका जो सार है, उसका जो सारांश है वो कविराज गोस्वामी कैसे मधुर और कैसे कम शब्दों में जो है वो अर्पण करते हैं। तो 8वें अध्याय का पहला श्लोक का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, संचार्य रामा भिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चया मृतानि गौराब्धिर एतैर अमुना वितीर्णय तत्वज्ञ रत्नालयताम प्रयाति। इतना सुंदर कंपोजिशन शायद ही संसार में कोई व्यक्ति कर पाएगा। देखिए क्या 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 वो वर्णन कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु सबसे पहले बोलते हैं वो कि ये महाप्रभु जो है वो भक्ति के विषय और सारे सिद्धांतों के सागर है, समुद्र है, गौर अब्धि। जो गौरांग महाप्रभु है वो समुद्र के रूप में कहा गया है, सारे भक्ति का तत्व भक्ति का रस वो समुद्र के रूप में गौरांग महाप्रभु है। और जिस प्रकार से समुद्र का ही जल जो है वो बाष्पी भवन होने के बाद बादल बन जाता है, मतलब समुद्र की ही शक्ति से आगे चल के बादल बनते हैं, तो उसी प्रकार से महाप्रभु की ही शक्ति से जो रामानंद राय है वो उस बादल के समान है, क्योंकि समुद्र का ही जल जाके आगे चल के बादल बनता है। उसी प्रकार से रामानंद राय उस बादल के समान है जिन्होंने इसी भक्ति के सागर से जो है वो जल तत्व भक्ति रस और तत्व को अर्जित कर लिया है, और जो बादल है आगे चल के बारिश के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही बारिश जब समंदर में गिरती है तब वह आगे चल के रत्नों में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी प्रकार से रामानंद राय ने जो प्रश्नों के जवाब दिए महाप्रभु के, वो महाप्रभु सुने और वो आगे चल के जो है वो इस रत्न के तरह बन जाते हैं सागर के रूप में, और वो सागर अभी संपूर्ण रत्नों से भर गया है। तो देखिए कैसा ये चक्र है, समुद्र है जल वही बाष्पीभूत होके बादल बन जाता है, बादल से वही जब बारिश बन जाती है तो वही बारिश की बूंद स्वाति नक्षत्र में जब समुद्र के अंदर चल जाती है तो वो रत्न या मोती बन जाती है। उसी प्रकार से महाप्रभु जो है वो भक्ति के रस और तत्व के सागर है, उनकी कृपा से रामानंद राय की तुलना की गई है बादलों से, जो बादल वर्षा करा रहे हैं और वही वर्षा के रूप में महाप्रभु जब आस्वादन करते हैं तो रत्न के रूप में बन जाते हैं। और हम लोग जोड़ सकते हैं कि कविराज गोस्वामी की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से 21वें सदी में बैठ के मुफ्त में हम लोग इन रत्नों को प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हमें मिला हुआ है उसके बारे में हमें जो है वो थोड़ी जानकारी रखनी होगी। और ऐसे महाप्रभु रामानंद राय को विदा देके और आगे आगे चलते हैं, तो इनकी दक्षिण भारत की यात्रा आगे चलती है। अध्याय 9 प्रारंभ हो जाता है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 9वां अध्याय है जिसका शीर्षक है महाप्रभु का दक्षिण भ्रमण, तो दक्षिण दिशा में विद्यानगर से आगे महाप्रभु चलते हैं, तो इसके पश्चात महाप्रभु गौतमी गंगा, मल्लिकार्जुन क्षेत्र, अहोबिलम नरसिम्ह, सिद्धवट में एक ब्राह्मण मिलता है जो प्रभु रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और राम नाम का जप करता है, तो महाप्रभु उसे मिलते हैं, उसे कृपा प्रदान करते हैं, उनके यहाँ पे प्रसाद लेते हैं और आगे चलते चलते महाप्रभु स्कंद क्षेत्र में जाते हैं। स्कंद क्षेत्र से पुनः महाप्रभु लौट के आते हैं सिद्धवट में, जहाँ पे वो राम जी का सेवक महाप्रभु को मिला था। तो अभी देखते हैं उसमें परिवर्तन हो गया, वो अभी कृष्ण का नाम ले रहा था। महाप्रभु उसे पूछते कि क्या हो गया, तू तो राम का नाम लेता था। तो वो विप्र कहता है कि जैसे ही मैं आपसे मिला हूं, आपसे आलिंगन लिया है, आपका दर्शन मुझे हुआ है, मेरे मुख से कृष्ण के अलावा और कोई नाम जो है वो नहीं निकलता है, ये आपकी अहितु की कृपा हो गई है। इस प्रकार से महाप्रभु उसके ऊपर कृपा करके और आगे 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 बढ़ते जाते हैं। वो जाते हैं वृद्ध काशी, और वृद्ध काशी जो क्षेत्र है वहां पर कई सारे अलग 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 सिद्धांतों के लोग वहां पर होते हैं। तार्किक मीमांसक यत मायावादी गण सांख्य पतंजल स्मृति पुराण आगम। तो इस प्रकार से जो है वह तार्किक लोग, मीमांसक मीमांसा सिद्धांत वाले लोग, मायावादी लोग, सांख्य सिद्धांत के लोग, पतंजलि इनके फॉलोअर्स, ये सब लोग जो है वहां पर आके महाप्रभु से मिलते हैं। महाप्रभु उनको वाद विवाद में हर एक व्यक्ति को हरा देते हैं और वहां पर भक्ति की स्थापना कर देते हैं। लेकिन एक ग्रुप होता है जो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो थे थोड़े बुद्धिस्ट लोग। वो लोग महाप्रभु के साथ बैठ जाते हैं और उनका जो मुखिया होता है वो तर्क प्रस्तुत करते हैं महाप्रभु के साथ। कई समय तक उनकी चर्चा चलती रहती है। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के 9 सिद्धांत है, उन 9 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है उन तत्ववादियों के द्वारा। महाप्रभु सबके सबका खंडन कर देते हैं और भक्ति की स्थापना कर देते हैं। जैसे ही भक्ति की स्थापना हो जाती है और वो तत्ववादी बुद्धिस्ट लोग हार जाते हैं, सारे उपस्थित लोग वहां पर उनकी तरफ देख के हंसना प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे ही सब लोग हंसना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये जो बुद्धिस्ट लोग जो हार गए थे तत्वदर्शन में, वो अभी एक अमेद्य भोजन खाने लायक कुछ नहीं ऐसा भोजन एक थाली में लेके आते हैं और महाप्रभु के सामने जैसे ही लाते हैं उनकी अवहेलना करने के लिए, आकाश से एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है और उस थाली का जो भोजन है वो अमेद्य भोजन उन्हीं बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर जो है वो फेंक देता है और उस थाली को ऊपर लेके जाके ऊपर से जोर से नीचे फेंकता है और जो मुखिया होता है जो वाद प्रस्तुत कर रहा था उसके सर पे लग जाता है और वो बेहोश होके जमीन के ऊपर गिर जाता है बिल्कुल अचेत अवस्था में। सारे उसके शिष्य इर्द गिर्द यहां वहां देखते हैं, वो महाप्रभु के पास चले जाते हैं, महाप्रभु के चरण स्पर्श करते हैं, कहते हैं कि बचाइए, ये अभी हमारे मुखिया गिर गए हैं। महाप्रभु कहते हैं उन्हें कि आप जाके उनके कान में कृष्ण कह के पुकारिए, वो सचेत अवस्था में आ जाएंगे। सारे शिष्य वहां पर चले जाते हैं और कृष्ण कृष्ण कह के पुकारते हैं, तो तुरंत उनके जो बुद्धिस्ट लोगों के मुखिया है वो उनकी जान में जान आ जाती है और वो भी उठ के कृष्ण नाम का जो है वो जोर से कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से उस वृद्ध काशी क्षेत्र में भी इन बुद्धिस्ट के ऊपर भी, जिनको अभी तक किसी ने वैष्णव सिद्धांत में पराजित नहीं किया था, उन्हें भी पराजित करके महाप्रभु भक्ति की स्थापना कर देते हैं। उसके पश्चात महाप्रभु तिरुपति जाते हैं। पाना नरसिम्हा, शिव कांची, विष्णु कांची, त्रिकाल हस्ती, पक्षी तीर्थ, वृद्धकोल, कावेरी तट, गो समाज स्थान, कुंभकर्ण कपाल, शिव क्षेत्र, और उसके पश्चात महाप्रभु आते हैं श्री रंग क्षेत्र में। तो अभी महाप्रभु श्री रंग क्षेत्र में पहुंच गए हैं, रंगनाथ भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं। श्री रंग में रामानुज संप्रदाय के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था व्यंकट भट्ट, और व्यंकट भट्ट से जब महाप्रभु मिलते हैं उनकी बहुत अच्छे से मित्रता हो जाती है और वहीं पर जब चातुर्मास्य प्रारंभ हो जाता है, व्यंकट भट्ट कहते हैं महाप्रभु से, आप कृपया यहीं पर रहें। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोआईला सुखे चारी मासे। इस प्रकार से कृष्ण कथा करते हुए 4 महीने तक महाप्रभु वहीं पर निवास करते हैं। श्रीरंग क्षेत्र में ही और एक ब्राह्मण रहता है जो अडानी है, जिसे पढ़ला निकला ठीक से आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवद गीता का अध्ययन करता रहता है। 18 अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न श्लोक करे उपहासे। 18 अध्याय वो गीता के पढ़ता है और 18 अध्याय तो पढ़ रहा है गीता के, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आता है, लेकिन फिर भी अशुद्ध पढ़े ना। जब वो अशुद्ध रूप से पढ़ते हैं, गीता पढ़ने नहीं आ रहा है, अशुद्ध रूप से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बाकी के लोग देखते हैं कि व्यक्ति इसको गीता पढ़ने भी नहीं आ रहा है, वो लोग उसका उपहास करते हैं। केह हासे केह निंदे तहा नहीं माने, अविष्ट हाँ गीता पढ़े आनंदित मने। कोई दूर से लोग देखते वो हंस रहे हैं, कोई निंदा कर रहा है, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए ये जो ब्राह्मण है वो गीता का पाठ पढ़ ही रहा है और उसका मन आनंदित होता है। पुलकाश्रु कंपस्वेद यावत पठन देखी आनंदित होइला महाप्रभुर मन। महाप्रभु एक बार जब वहां से गुजर रहे होते, वो देखते हैं कि ये ब्राह्मण गीता पढ़ने भी ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते केवल पढ़ नहीं रहा है, उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और शरीर में दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं। महाप्रभु से रुका नहीं जाता, महाप्रभु उस विप्र के पास चले जाते हैं और पूछते हैं, महाप्रभु पूछला तारे सुन महाशय कौन अर्थ जानी तुम्हार ये तो सुख होए। महाप्रभु पूछते हैं कि हे महाशय, कौन सा अर्थ आपने गीता का समझ लिया है जिससे आपको इतना आनंद आ रहा है। वह विप्र बोलता है, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। वह विप्र कहता है कि मुझे शब्दार्थ भी नहीं आते, पढ़ना भी ठीक से नहीं आता, लेकिन केवल मेरी गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए मैं गीता का जो है वो पाठ पढ़ रहा हूं। और बहुत सुंदर वो कहते हैं, अर्जुनेर रथे कृष्ण होय रज्जुधर वसियाचे हाते तोत्र श्यामल सुंदर। वो कहते हैं कि अर्जुन का जो गीता का मुखपृष्ठ है, मुखपृष्ठ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखो अर्जुन का रथ हाँकने के लिए कृष्ण रज्जुधर, कृष्ण ने हाथ में रस्सी ली है, और वसियाचे हाथ तोत्र श्यामल सुंदर, और एक हाथ में उन्होंने जो है वो लगाम ली हुई है और तोत्र लिया हुआ है, जो छड़ी ली है रथ को हाँकने के लिए। ऐसा यह सुंदर दृश्य मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अर्जुन रे कही तेछेन हित उपदेश तार देखी हय मोर आनंद आवेश। और अर्जुन के हित के लिए उन्होंने ये गीता का उपदेश दिया हुआ है, उसको स्मरण करते ही मैं प्रेमावेश में चला जाता हूँ, आगे पढ़ ही नहीं पाता हूँ। यावत पढ़ो तावत पढ़ो तार दर्शन यही लागी गीता पाठ ना छड़े मोर मन। जब भी मैं जो भी पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ूं वहां पढ़ूं, लेकिन ये जो ये सुंदर दृश्य मेरे आंखों से ओछल ही नहीं हो रहा है, उसी का मेरा स्मरण होता है और मेरा मन गीता को छोड़ने का करता ही नहीं है। इस प्रकार से गीता के प्रति उनका प्रेम और आसक्ति थी। महाप्रभु इतने संतुष्ट हो जाते हैं उसके ऊपर और उसे कहते हैं, प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हाराई अधिकार, तुम्ही से जानिए यही गीतार्थ अर्थ सार। महाप्रभु कहते हैं कि गीता पढ़ने में वास्तव में तुम्हारा ही अधिकार है, और कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, महाप्रभु कहते हैं कि जो तुम जान गए हो वही गीता का सार है, कि जो आप जानते हैं। देखिए गीता पढ़ना नहीं आता है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, अशुद्ध शुद्ध भाव से पढ़ रहे, गीता पढ़ना भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो तू जानता है वही गीता का सार है। गीता का सार हम लोग जानते हैं क्या है, लेकिन महाप्रभु कहे कि जो मैंने बताया है कृष्ण के अवतार में वो सार नहीं है, जो तू जान गया है वही जो है वो गीता का सार है। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, गुरु की आज्ञा से ही मैं जो है वो गीता पढ़ रहा हूँ। उसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि मुझे कुछ ज्ञात है नहीं है, मैं पंडित हूँ नहीं हूँ, जो कुछ है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने केवल हमें आज्ञा दी है कि आप हमारे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, इसलिए यदि हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते, यदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं लेकिन केवल उनकी आज्ञा की शक्ति की वजह से हम इन ग्रंथों को जो है वो समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु 4 महीने तक जो है वो वहाँ पर श्रीरंग क्षेत्र में रहते हैं, और जो रामानुज संप्रदाय के जो भक्त है वेंकट भट्ट, उनके साथ भी जो है वो कुछ वार्तालाप होता है। तो जैसा हमने कहा कि अलग अलग वार्तालाप है, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ महाप्रभु का वार्तालाप रामानंद राय के साथ वार्तालाप, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप, और ऐसा और एक वार्तालाप प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में, वो है व्यंकट भट्ट, इनके साथ वार्तालाप जो कि रामानुज संप्रदाय के थे। तो उनका वार्तालाप क्या हुआ, महाप्रभु ने व्यंकट भट्ट से क्या प्रश्न पूछे, और जवाब देने के बाद भी व्यंकट भट्ट कैसे महाप्रभु से हार जाते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे सारे भक्तों को जो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा मानकर ग्रंथों के अध्ययन में लगे हुए हैं, और जो चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट इसका हमने आयोजन किया हुआ है। ये कंटेस्ट अभी केवल नासिक के लिए नहीं रहकर ये इंटरनेशनल कंटेस्ट हो गया है। अभी तक लगभग 300 लोगों ने इसमें भाग लिया है, और कल ही कई सारे भक्त बता रहे थे कि न्यू जर्सी, जर्मनी, चाइना, पाकिस्तान तक वहाँ से कई सारे लोगों ने इसमें जो है वो भाग लिया है, और अपने आप को ये सौभाग्यशाली मान रहे कि किस प्रकार से उन्हें इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए मिल रहा है। शायद किसी मंदिर ने ऐसा उपक्रम अभी तक नहीं जताया होगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी हम लोग ये आयोजन किया हुआ है, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। जिनके पास चैतन्य चरितामृत है, नहीं है, पढ़ना जानते हैं, नहीं जानते हैं, केवल इन सत्रों को आप सुन लीजिए, और पढ़ेंगे तो और भी अच्छा, वापस 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 पढ़ेंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि चैतन्य चरित्र यह ग्रंथ ऐसा है, चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम चरवण कोरिते हो यह रस आस्वादन, ये गन्ने के समान है, जितना आप इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे वो चरवण जितना चरवण करते हैं गन्ने का, उतना उसका आस्वादन बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आप जितना वापस पुनः पुनः इसका चरवण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उतना आपका आस्वादन बढ़ते जाएगा, और उतना आपका रति इन ग्रंथों के प्रति बढ़ता जाएगा। और कविराज गोस्वामी ने जो आशीर्वाद प्रदान किया है कि जो इसे सुनता है उसे राधा कृष्ण के चरणों के प्रति जो है वो प्रीति प्राप्त हो जाती है, तो वो प्रीति भी हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम लोग इसको गंभीरता से ले, और इन ग्रंथों को हम लोग जो है वो न केवल पढ़े बल्कि इनका आश्रय हम लोग ढूंढे। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।